मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, शायद आप लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि आज मैं किस विषय पर बोलने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि आपका अनुमान पूरी तरह सही भी होगा। आज वैलेंटाइन डे है, तो सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा कि मैंने वैलेंटाइन डे का हिंदी अनुवाद कर दिया है प्रेम दिवस। हालांकि जो नाउन होते हैं, जो संज्ञाएं होती हैं, उनका कभी अनुवाद नहीं किया जाता, भाषाई अनुवाद नहीं होता। ठीक उसी तरह से जैसे कि यदि किसी का नाम सूर्य प्रकाश है तो आप उसे सन लाइट कहके नहीं पुकार सकते। खैर, तो सुबह सुबह हम लोग चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ने के दौर से गुजर रहे थे, तो मेरी पत्नी ने कहा कि कल वैलेंटाइन डे है तो आप प्रेम पर कुछ बोलिएगा। मैंने कहा कि नहीं, वो वैलेंटाइन डे तो आज ही है। तो वो चौंक गई कि अच्छा, आज ही वैलेंटाइन डे है। मैं कहा कि हाँ, आज ही वैलेंटाइन डे है। तब ये हुआ कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए, तो मैंने कहा कि एक गीत सुना जाए, और वो है हमने तुझको प्यार किया है जितना, कौन करेगा उतना। दोस्तों, ये गीत मुकेश जी का गाया हुआ है, यदि आपको वक्त मिल सके तो आप सुनिएगा। हालांकि मैंने इस गीत के लिए कहा तो मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा अच्छा गीत है छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, यह मुनासिब नहीं जिंदगी के लिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो ये दोनों गीत सुन लेते हैं। तो सबसे पहले गीत सुना गया कि हमने तुझको प्यार किया है जितना, और दूसरा गीत फिर सुना गया कि ये छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। वाह, शुरुआत बहुत अच्छी हो गई वैलेंटाइन डे की। खासकर मुकेश जी का जो गाया हुआ गीत है, जब मैं ये सुनता हूं तो मुझे अपने मसूरी के दिन याद आ जाते हैं। मसूरी एकेडमी में जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे जो रूम मेट थे, यानी कि मेरे कमरे में जो मेरे साथ रहते थे, या कह लीजिए जिनके साथ मैं उनके कमरे में रहता था, वो मुकेश जी के सगे भांजे थे। इसलिए जब भी मैं मुकेश को सुनता हूं मुझे उनकी याद आ जाती है, या कह लीजिए कि उनके साथ रहने ने मुकेश के साथ मेरा जुड़ाव कुछ ज्यादा गहरा कर दिया। लेकिन बात केवल इतनी नहीं थी, बात एक और भी थी कि हम लोगों का जो दौर रहा है, जो वक्त रहा है, सन 1970 के आसपास का वक्त, उस समय सच पूछे तो ज्यादातर युवा अपने अपने दिल में जिस सितार को लेकर घूमते रहते थे, प्रेम के सितार को, उनके तार टूटे हुए होते थे। और अगर सितार का तार टूटा हुआ हो तो उससे आवाज कैसे निकलेगी, खरखराती हुई दर्दनाक सी कुछ इसी तरह की आवाज निकलेगी। तो ऐसा लगता है कि जो हम लोगों की पीढ़ी के जो लोग हैं उन्हें शायद मुकेश की आवाज ज्यादा अपनी आवाज लगती है। हो सकता है कि मुझे इसीलिए मुकेश का यह गीत बहुत पसंद हो। खैर दोस्तों, तो वो गीत हम लोगों ने सुना और मजा आया, बहुत अच्छा लगा। पुराने ख्यालों में खो जाना, पुराने वक्त में चले जाना, उसकी यात्रा करना अपने आप में बहुत खुशनुमा होता है। मुझे आज के अपने लाइफ मैनेजमेंट में क्या बात कहनी चाहिए, तो मेरी पत्नी ने अपनी तरफ से विषय सुझाया। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मेरा मन कर रहा है कि मैंने बहुत सी लघु कथाएं लिखी हैं जिनमें से कुछ कथाएं प्रेम के ऊपर हैं, और तुम खुद कहती हो कि प्रेम की जो लघु कथाएं हैं मेरी लिखी हुई वे बहुत अच्छी हैं, तो क्यों ना मैं प्रेम वाली एक दो लघु कथाएं ही सुना दूं। तो वो एग्री कर गई। देखिए, आज वैलेंटाइन डे है तो मुझे उनकी बात माननी ही चाहिए, और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि वो एग्री कर गई। तो दोस्तों, अब मैं आप सबके साथ वैलेंटाइन डे मनाने जा रहा हूं। कैसे? अपनी लिखी हुई लघु कथा सुनाकर। जो वक्त मुझे दिखाई दे रहा है उसमें मुझे लग रहा है कि शायद मैं एक ही लघु कथा सुना पाऊं, तो मैं वो लघु कथा सुना रहा हूं जो कम इमोशनल है। कभी 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 होता यह है ना कि ज्यादा इमोशनल अगर आप कथा सुनाने लगे तो फिर बार बार बंद करना पड़ता है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो लीजिए, अब एक लघु कथा इस वैलेंटाइन डे पर आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं को यह समर्पित है। इसका शीर्षक है चाहत। दरअसल मेरी एक किताब छपी 101 लघु कथाएं, उसी में संग्रहित यह लघु कथा है। शीर्षक है चाहत। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लघु कथाओं को सुनने के लिए ध्यान देना जरा जरूरी होता है, क्योंकि चीजों की पकड़ नहीं तो छूट जाती है, और अगर पकड़ छूट गई तो फिर लघु कथाओं की संवेदना से जुड़ पाना असंभव होता है, और अगर आप संवेदना से नहीं जुड़ पाए तो लघु कथाएं बिल्कुल बेकार हो जाती है। आपको लगेगा यार इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या लघु कथा है, इसमें भी कोई बात कही गई है, फालतू की बात है ये। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वक्त लगा लीजिएगा आज वैलेंटाइन डे पर मेरे साथ वैलेंटाइन मनाने के लिए। दोस्तों, तो शुरुआत करता हूं। मृणालिनी के आमंत्रण पत्र की इन पंक्तियों को सौरभ बार बार मन ही मन दोहरा रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। विश्व के बदलते राजनीतिक संबंधों पर सौरभ का भाषण बहुत जोरदार रहा, धारा प्रवाह और गंभीर भी। तालियों की गड़गड़ाहट के बाद हॉल धीरे धीरे खाली हो चुका था, सिवाय मृणालिनी और सौरभ के कोई भी अन्य वहां नहीं था। सभी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे आपको, हां तुम्हारे अतिरिक्त शायद शेष सभी। सौरभ ने जैसे ही यह वाक्य पूरा किया, उसे लगा कि वह यह वाक्य कह कैसे गया। हां तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। यह कहते ही मृणालिनी के गालों पर सुर्ख रंग तड़पने लगा और उसे लगा मानो उसकी पलकों पर पानी से लदे हुए बादलों का बोझ उतर आया हो। थोड़ी देर के बाद उस विशाल कक्ष में खामोशी की एक अदृश्य डोरी सी तन गई। दोनों ने यह महसूस किया कि यदि इस डोरी को हल्के से भी छेड़ने की किसी ने कोशिश की तो सारा कक्ष न जाने किस तरह की झनकार से भर उठेगा। लेकिन स्तब्ध कर देने वाली उस खामोशी के गर्त में लंबे समय तक सहज रूप से सांस ले पाना भी मुश्किल हो रहा था। अतः बर्फ की तरह जम गई इस चुप्पी को अंत में सौरभ ने ही तोड़ा। लेकिन मृणालिनी, तुमने तो कहा था कि तुम जीवन भर विवाह ही नहीं करोगी, बोलो, कहा था ना? मृणालिनी जानती थी कि आज सौरभ उससे पहला प्रश्न यही पूछेगा। कई साल पहले जब सौरभ ने मृणालिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, तब मृणालिनी ने अपनी छाती पर पत्थर रखकर उससे कहा था नहीं, लेकिन साथ ही यह भी कहा था, सौरभ यदि तुम नहीं तो कोई दूसरा भी नहीं। सौरभ को इस उत्तर की बिल्कुल भी आशा नहीं थी, फिर यह उत्तर भी तो बड़ा रहस्यमय था। सौरभ का यह सोचना स्वाभाविक था कि यदि मैं नहीं तो फिर कोई दूसरा भी क्यों नहीं। 7 साल गुजर गए उसे इसका उत्तर ढूंढते हुए, लेकिन अभी तक उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। फिर उस दिन उसके विवाह का आमंत्रण पत्र पाकर तो वह स्तब्ध ही रह गया था, और वह आमंत्रण पत्र भी इन शब्दों के साथ कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। जिस मृणालिनी के स्नेह को अपनी थाती समझकर अब तक सौरभ अपने जीवन पथ पर बढ़ता जा रहा था, उस पर किसी दूसरे के अधिकार की सूचना पाते ही उसका अंतरतम रेत के टीले में परिवर्तित हो गया था। इसलिए उसने सोचा कि अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद वह मृणालिनी से उसके बारे में पूछेगा अवश्य, और अंततः उस गुप्त चुप्पी के बीच उसने पूछ ही लिया, लेकिन मृणालिनी तुमने तो कहा था कि तुम जीवन भर विवाह नहीं करोगी, बोलो, कहा था ना? लेकिन मृणालिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अपराध बोध की इस मानसिकता लिए वह आंखें नीची करके अपने पैर के अंगूठे से सीमेंट के पक्के फर्श को कुरेदने की नाकाम कोशिश करने लगी। जब सौरभ के लिए उसकी यह चुप्पी असह्य हो उठी तो उसने पुनः प्रश्न किया, तो मृणालिनी अब मुझे भी इजाजत दो कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकूं। यह सुनते ही मृणालिनी फूट फूट कर रो उठी और एक झटके के साथ वहां से चली गई। सौरभ हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। कुछ दिनों के बाद सौरभ के पास मृणालिनी का पत्र आया। सौरभ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकी क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए पाकर खोना नहीं चाहती थी, लेकिन सौरभ तुम मेरी तरह किसी और से विवाह मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार को किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकती। तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम पुरुष हो। दोस्तों, ये छोटी सी लघु कथा जो आज के वैलेंटाइन डे पर आप सबको समर्पित है। अब समाप्त करता हूं। नमस्कार।